ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता को लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उन्होंने एआई मॉडल से जुड़े अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से संबंधित चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई स्थापित किए जाने के निर्णय के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी। उन्होंने उत्तरदायी और समावेशी एआई शासन आगे बढ़ाने में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने एक प्रमुख घोषणा में कहा कि भारत अगले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। यह सबके लाभ के लिए एआई के भविष्य को आकार देने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए वैश्विक साझेदारी और समावेशी बनाने का भी आह्वान किया, जिससे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई के भविष्य की कुंजी मशीनें नहीं बल्कि मानवता है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कारिस ने रेखांकित किया कि भारत और एस्टोनिया के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन, स्वतंत्रता तथा बहुलतावाद के मूल्यों के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर ही उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एस्टोनियाई सरकार और कंपनियों को भारत में तेजी से हो रहे विकास से उत्पन्न निवेश अवसरों का पता लगाने और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। पेरिस में कल भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्थिर और पूर्वानुमानित नीति पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर चलते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यह जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने फ्रांस के निजी क्षेत्र को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा स्नान से पहले कल 1,09,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस भव्य उत्सव में इस वर्ष 10,00,000 से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। अब तक 45,80,00,000 से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इससे भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक और उल्लेखनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर भविष्य दृष्टि के प्रति भरोसे की पुष्टि हुई है। लैम रिसर्च कारपोरेशन प्रसिद्ध अमरीकी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह वार्षिक आधार पर 14.69% की वृद्धि के साथ 17,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19% से अधिक बढ़ा है। व्यक्तिगत आयकर संग्रह 9,47,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि कारपोरेट कर संग्रह 7,78,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस समय यूनानी पद्धति में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल और औषधि निर्माण के क्षेत्र में भारत का दुनिया में अग्रणी स्थान है। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। संसदीय समिति ने सर्दियों में फसल अवशेष पराली जलाने की घटना को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समिति ने कल पेश अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि धान अवशेषों की मात्रा की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल से पहले सालाना आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।